फिर मंगलाचरण से हम लोग यहाँ बात शुरू करते हैं। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान ता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी ने यहाँ इस छेड़ाला नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम वीतराग और विज्ञानता को नमस्कार किया। महावीर भगवान को नमस्कार नहीं किया और आदिनाथ को भी नमस्कार नहीं किया, वीतरागता को नमस्कार किया। क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? समंतभद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य में वर्धमान को नमस्कार करते हैं, महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं, और छेड़ाला में दौलत राम जी यहाँ वीतरागता को नमस्कार करते हैं। वीतराग विज्ञानता, जो तीनों लोकों को जानने वाले हैं और जिन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया है, वे हमारे भगवान हैं और उन्हें यहाँ दौलत राम जी ने नमस्कार किया है। न केवल वीतराग और विज्ञानता को नमस्कार किया है, आप यदि थोड़ा सा गहराई में उस मंगलाचरण को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि द्रव्य स्वभाव से जो वीतरागी है, जो वीतरागता है, और द्रव्य स्वभाव में जो केवल ज्ञान है उसे नमस्कार किया है। माने बाहर में किसी परमात्मा को नहीं, बाहर में किसी देवता को नहीं, अपने अंदर में जो देवता विराजमान है उसे नमस्कार किया है। पहली ढाल में चार गति के दुखों का स्वरूप बतलाया, दुखों का वर्णन किया गया। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, मनुष्य गति के, तिर्यंच गति के, नरक के, देव गति के दुख बतलाए गए। लेकिन सच में हम लोग ऐसा समझते हैं कि चारों गतियों में कितने दुख हैं, चारों गतियों के अंदर कितने दुखों का वर्णन किया है। हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है मनुष्यों के अंदर अपार दुख है, तिर्यंचियों में तो दुख कितने हैं, नारकियों में तो तिल तिल करे देह के खंड, बहुत दुख दिखते हैं। लेकिन भाई दौलत राम जी की पंक्तियों को, इस छेड़ाला के ग्रंथ की पंक्तियों को, मूल पंक्तियों को देखें तो आप उसके रहस्य तक पहुंच पाएंगे। चारों गतियों में दुख नहीं है, साफ साफ लिखा है दुख नहीं, दुख है यहाँ पर। आप कह रहे हो दुख नहीं है, यहाँ तो चार गति के दुखों का वर्णन किया है। हमने पढ़ी है छेड़ाला, पढ़ी है आप लोगों में से कौन कौन ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ी चार गति के दुखों की चर्चा? इसमें से थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, मतलब चार गति के दुखों की चर्चा है उसमें। मैं किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हर व्यक्ति ये कहता है दुखों की चर्चा है। लेकिन भाई तिर्यंच गति में दुख है ही नहीं, नरक गति की जो दुखों का वर्णन किया है वहां दुख है ही नहीं। तो फिर वर्णन तो किया है दौलत राम जी ने, आप कहते हैं दुख नहीं है। तो दौलत राम जी ने ये पूरा वर्णन करने के पहले लिख दिया, भूल आपको भरमत वाली। ये जो दुख बतलाए गए हैं ये सारे के सारे दुख नरक तिर्यंच आदि में नहीं है। उस नरक गति में रहते हुए ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए दुख उठाता है। तिर्यंच गति में रहता हुआ ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए दुख उठाता है। मनुष्य और देव गति में भी दुख का कारण कोई परिस्थितियां नहीं है। नरक में खाने को कुछ नहीं मिलता इसलिए दुखी होते हो, ऐसा नहीं है। दुख का कारण संयोग नहीं होते, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती। बाहर में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी संयोग हमारे सुख का कारण भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है। तो फिर ये जीव दुखी क्यों होता है कि उन पदार्थों से मैं सुखी हो जाऊंगा? अपनी इस मान्यता से दुखी होता है, अपने आप को भूल करके दुखी होता है। ये बात पहली ढाल के अंदर कही गई। और पहली ढाल समाप्त करते हुए उन्होंने ऐसा कह दिया कि देव गति का भी यदि जीव हो जावे तो वहां पर भी सम्यक दर्शन के बिना दुख प्राप्त करता है। फिर दूसरी ढाल में उन्होंने चर्चा की, छह ढाल है ना इस ग्रंथ का नाम, तो छह अध्याय हैं इसके, छह चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में चार गति की चर्चा हुई, दूसरे चैप्टर में चार गति में ये क्यों परिभ्रमण किया, किस लिए घूमा है चार गति में, उसकी चर्चा की है। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन सब का वर्णन किया गया। फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन आदि की चर्चा की, अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की, सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा की, बहुत विस्तार से वो सब बातें बतलाई है। और फिर उसके पश्चात तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसमें सात तत्व की चर्चा की है, नौ पदार्थ की चर्चा की है। बहुत प्रयोजनभूत बात है, बहुत सरल बात है, हम लोग सबको बड़ा आनंद आएगा। हम यहाँ से पहला छंद बोलते हैं तीसरी ढाल का, यहाँ से अपने को इसके बारे में चर्चा करनी है। बेसिक बात अपने को इतनी पता लग गई कि इस तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है। अब चूंकि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सात तत्वों की श्रद्धा का नाम, तत्व अर्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर वो तत्व कौन से हैं, तत्व का क्या स्वरूप है, तत्व को हम कैसे जाने। तो दौलत राम जी ने यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए सबसे पहले सात तत्वों का वर्णन किया है, फिर सम्यक दर्शन के स्वरूप को बतलाया है, सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, और चौथी ढाल समाप्त करते हुए देश चारित्र की चर्चा कर ली। पांचवी ढाल में वैराग्यमय 12 भावनाओं की चर्चा की, और छठवीं ढाल में पूर्ण संयम, सकल संयम, और फिर उसके बाद में सिद्ध दशा तक की चर्चा की। इस तरह से ये छह ढाला ग्रंथ, छह तो इसकी संख्या है अध्यायों की, इसलिए छह प्रयोग किया गया। और ढाल कहते हैं सुरक्षा प्रदान करने वाली वस्तु, तलवार से जब योद्धा लड़ते थे युद्ध क्षेत्र में, तो उस तलवार से बचाव के लिए जो एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो एक पदार्थ होता था उसे कहते थे ढाल। तो ये छह ढाल माने संसारी जीव को कर्मों से बचाने के लिए, दुख से बचाने के लिए जो ढाल का काम करे, ऐसे ये छह अध्याय हैं। पहला छंद पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का, तीसरी ढाल का। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। मिला सभी को, नहीं दिखा शायद, कितने सुंदर बात कह दिए। फर्स्ट जहां से शुरू हो रहा है त्रिजु ढाल, त्रिजी ढाल है ना, सांचु सुख बे प्रकारे मोक्ष मार्ग नु कथन अने सम्यक दर्शन नो महिमा, ये हेडिंग दिया है। ठीक है, सच्चे सुख की चर्चा करना चाहते हैं। सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं? देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसी रहती है, विकल्प रहता है, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या चर्चा करेंगे। हम यहाँ सिर्फ सुख की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही दौलत राम जी कह चुके हैं तीन लोक में जितने भी जीव हैं वो सब सुख चाहते हैं। आपको यदि ये कहा जाए कि आपको कोई बिजनेस खोलना है, बिजनेस शुरू करना है, और ये कहा जाए कि कौन सी चीज का बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप ये सोचते हैं कि किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है। ऐसा तो जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा हो हम शायद उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहेंगे, उसको सेल आउट करना चाहेंगे, उसका शोरूम खोलना चाहेंगे, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। तो इस तीन लोक में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? सुख की डिमांड है। दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप एक भी व्यक्ति को लाकर के ऐसा बतलाइए जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे को सुख नहीं चाहिए। और यदि मैं इसमें एक प्रश्न और करूं आपसे कि आप लोगों को सुख चाहिए, कितना चाहिए? ऐसा यदि हो 50% सुख और 50% दुख तो चलेगा? क्या बात कर रहे हो आप। अच्छा थोड़ा सुख बढ़ा देते, 75% सुख कर देते, 25% दुख तो चलेगा? नहीं चलेगा। 90% सुख 10% दुख तो चलेगा? हमें तो 100% सुख चाहिए, दुख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप सुख चाहते तो हैं, लेकिन सुख मिलेगा कैसे, और वो सुख है कौन सी जगह पर, उसको तलाशना तो पड़ेगा, वो सुख कहाँ मिलेगा। सुख की तलाश में ना मालूम हम कहाँ कहाँ जा करके आते हैं, स्विट्जरलैंड पेरिस घूम आते हैं सुख की तलाश में, दुनिया के कोने कोने में कहीं तो सुख मिलेगा। और यदि हमारे को ऐसे कहीं घूमने के जगहों पर सुख ना मिलता हो तो हम सोचते हैं समी शिखर जी चलो वहां सुख मिलेगा, गिरनार जी चलो तो वहां सुख मिलेगा, शत्रुंजय पालीताना में सुख मिलेगा। कहाँ मिलेगा बतला, अपने को ऐसा लगता है ना कि शायद हाँ यहाँ तो। और कभी कभी लोग ऐसा कहते भी हैं, उस क्षेत्र पर पहुंच करके, उस जगह पर पहुंच करके लोग ऐसा कहते हैं यहाँ तो बहुत मन लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा अपार शांति मिलती है। लेकिन दो चार पांच दिन होते नहीं है फिर लगता है अब तो घर चलना चाहिए। वो कहाँ चला गया सुख, वो आनंद कहाँ चला गया। यदि वहां सुख था तो हमें वही रह जाना चाहिए था ना। और कई लोग ऐसा मन भी बनाते हैं, ऐसा मन होता है कि हे भगवान यहीं आकर के बस जाऊं, यहीं आकर के रह जाऊं। और कई भक्तियों में भजनों में लोग इस तरह की बातें भी कहते हैं, मन करता है हे प्रभु तुम्हारे चरणों में आकर के बस जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। लेकिन सच बात यह है वहां कहीं सुख नहीं है, निज घर में आने पर जो शांति मिलती है वैसी शांति दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 5-7 स्टार होटल्स में आप रुको तो भी आपको वैसा आराम, वैसी शांति, वैसी अनुकूलता नहीं मिलती जैसी अपने घर में मिलती है। ये तो अनुभव की बात है ना सबके। घर से बाहर हम कितने दिन रह सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, जब अपने घर में आते हैं तो बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, बाहर तो थकान ही थकान है। देखो घर में परेशान होता है, साल दो साल 6 महीना 8 महीना घर में रहा तो इसको लगता है कहीं ना कहीं बाहर घूमना चाहिए, बाहर में सुख मिलेगा, थोड़ा सा बहार घूम के आना चाहिए। और बाहर जाता है तो 5-7 दिन में फिर इसका मन होता है कि नहीं नहीं बस अब तो वापस लौटना चाहिए। इसका मतलब ये घर में सुख नहीं मिलता तो बाहर चला जाता है, बाहर में सुख नहीं मिलता तो घर में आने की बात सोचता है, लेकिन दोनों ही जगह पर सुख नहीं है। सुख तो घर में मिलेगा लेकिन घर का क्या स्वरूप है वो नहीं पहचाना, कौन से घर में सुख मिलेगा। जिसे हमने अपना घर समझ रखा है वो अपना घर नहीं है, न तो हमारे को सुख की खबर है और न हमारे को दुख का पता है, दोनों ही जगह गड़बड़ी हो रही है, दुख का भी पता नहीं है। अभी यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या दुख है तो या तो आप ये कह सकते हैं अरे पंडित जी कोई दुख नहीं है, बहुत आराम से सुख शांति से लाइफ बीत रही है अपनी, और या फिर ये कह सकते हैं एक आध हो तो बताएं यहाँ तो दुखी दुख है, परेशानियां ही परेशानियां, एक संकट थोड़ी ना, मैंने संकट तो बहुत है, परेशानियों का तो समझ लो आप सिलसिला लगा रहता है, लाइन लगी रहती है, एक परेशानी मिटती नहीं है कि दूसरी परेशानी चालू हो जाती है। और यहाँ तो लाइफ बहुत हार्ड है, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता है और दूरियां इतनी ज्यादा है, कितना कठिन है, कितने दुख कितनी परेशानियां हैं। मैं दोनों ही प्रकार से बात करना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे को कोई परेशानी नहीं है हम सुखी हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया आप घर में रहते हुए सुखी हो, आप संसार में रहते हुए सुखी हो, ये मोक्ष मार्ग की चर्चा आपके लिए नहीं है। जो यही सुखी, ये तो दुखी लोगों के लिए है। और यदि मैं भी आपसे पूछूं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है और आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है मजे से है, अरे यहाँ क्यों आए हो फिर, हम मंदिर क्यों आते हैं, हम स्वाध्याय करने के लिए क्यों आए हैं। अरे जैसे संसार के दुख दुख रूप भाषित नहीं होते, उसे संसार से मुक्त होने का मार्ग नहीं मिलता, सबसे पहले हमारे को दुख लगना चाहिए, कष्ट लगना चाहिए, परेशानी लगनी चाहिए। संसार यदि हमारे को अभी रुचता है, गमता है, पसंद आता है तो समझिए आप अभी संसार से पार होने का मार्ग नहीं मिलने वाला है। अभी सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत दूर है, भगवान के पास आए हम और कितनी भी भक्ति और स्तुति में भगवान को कुछ न कुछ सुना जाए, बैठे रहते हैं भगवान तो चुपचाप, हम सुनाते रहते हैं उनको अपने मन की भगवान कुछ बोलते तो है नहीं, हम आते हैं और अपनी अपनी सुना जाते हैं। हम ये कह रहे हैं भगवान को सुनाना बंद करो और भगवान की सुनना शुरू करो। आज तक हमने भगवान को सुनाने का काम किया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा हमने, खूब सुनाया है हमने। एक दिन मैं दर्शन कर रहा था ऐसे ही मंदिर में, और दर्शन करते करते भगवान मुझसे कुछ बोले। आप लोगों से बोलते हैं क्या, कभी बात करते हैं मुझसे, कर लेते हैं कभी कभी जब मूड में होते हैं। बोले एक दिन मेरे से कि क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो। मैंने एकदम देखा मंदिर में कोई नहीं था, आवाज कहां से आ रही है। भगवान मुझसे बोले क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। क्या बोले, रोज कहते हो, रोज आकर के सुना करके जाते हो, हे भगवान अपने अपने सुनाते हो, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो, क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को। आगे मैं तो क्या जवाब देता, मैं कुछ जवाब देता उसके पहले ही भगवान बोले, जानता हूं सर्वज्ञ है, सब बात जानते ही है, जानता हूं तुझ पर है नेतागिरी का असर, इस कारण छोड़ता नहीं बोलने में कोई कसर। मैंने कहा प्रभु क्या कह रहे हो आप, नगर क्या भूल गया 84 के चक्कर को। कहा नहीं 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 भूला, तो फिर याद रख इस प्रतिज्ञा को कि जो निगोद में सोही तुझ में सोही मोक्ष में यार। क्या होगा प्रभु इससे कि जिससे कि तुझे ना आना पड़े पुनः मेरे पास, ये उपाय बतला दिया उन्होंने। और सच में जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो निगोद दशा में चेतन मौजूद है, जो आत्मा वहां निगोदिया जीव में है, जो चींटी के शरीर में जीव है, जो हाथी के शरीर में जीव है, वही आत्मा जो परमात्मा में मौजूद है, जो आदिनाथ भगवान में, शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान में मौजूद है, वही आत्मा हमारे भीतर है, समझ लीजिए वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। और जो इसमें भेद करता रहता है तो वो भेद किसी भी प्रकार का हो सकता है, कभी त्रियंच का, मनुष्य का, आदि का भेद कर दिया, कभी एक इंद्रिय पंचेंद्रिय का भेद कर दिया, कभी हिंदू मुसलमान जाति का भेद कर दिया, कभी स्त्री पुरुष का भेद कर दिया, कभी जैन अजैन का भेद कर दिया, और कभी जैन में दिगंबर श्वेतंबर का भेद कर दिया, कि तुझे यदि आत्मा नहीं दिखती है तो तुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। कब समझ में आएगा, कब भगवान बन सकेगा, भगवान बनने का मार्ग कहां से शुरू होता है। यहां तो कह रहे हैं जीव मात्र में भगवान बनने की सामर्थ्य है, हर जीव सुखी हो सकता है, यही तो विशेष बात है जैन दर्शन की, अन्य किसी दर्शन में नहीं है। तिर्यंच गति के जीव जहां सुखी हो सकते हैं, तिर्यंच गति के जीवों को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, एक शेर का जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, सर्प को सम्यक दर्शन हो सकता है, हाथी को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हम आपको नहीं हो सकता। इंद्रभूति तो ब्राह्मण थे, मोक्ष गए हैं, आप मानते हैं कि नहीं इंद्रभूति को, मानते हैं आप लोग, पक्का ब्राह्मण थे वो तो, फिर भी मानते हैं, हिंदू थे फिर भी मानते हैं। कौन हिंदू कौन ब्राह्मण, क्या बात कर रहे हैं आप। यहां तो जैन दर्शन ये बात कहता है कि जो जैन सिद्धांतों को स्वीकार करता है वो जैन है, जो जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है वो जैन है, जो वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करता है वो जैन है, और ऐसे जैन त्रियंच गति में भी होते हैं। आप मनुष्यों में होने का निश्चित कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, सब जगह होते हैं, हर जीव सुख चाहता है, अपना स्वरूप जानना पहचानना चाहता है, हम भी जीव हैं, हम भी आत्मा है, आपको भरोसा है कि नहीं हम आत्मा है, पक्का। कभी कभी क्या होता है लोग डर जाते हैं, एक बार हम ऐसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, मैं और फादर ऐसे चर्चा कर रहे थे आपस में, कुछ आत्मा की चर्चा चल रही थी, आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में, द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में। जब हमारी चर्चा बंद हो गई तो थोड़ी देर बाद में वहां पास में बैठे हुए एक सज्जन बोले, अरे भैया एक बात बताओ, आप लोग इतनी आत्मा आत्मा की बातें करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता। आत्मा की बातें करना मतलब ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत की बातें कर रहे हो, आत्मा मतलब कोई डरावनी चीज ऐसा लगता है। नहीं, हमारे घर में एक मेहमान आए और अकेले ही आए थे वो। हमने उनको रूम में ले जाकर के ठहरने को कहा। रात का समय था, 10:30-11 बज गए थे। हमने कहा आप यहाँ रुक लेंगे अकेले, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं नहीं क्या दिक्कत है। मैंने कहा नहीं वैसे कोई डरने की बात नहीं, हमारे यहाँ 5 आत्माएं। बोले 5 आत्माएं? मैंने कहा हाँ, मैं, मेरी वाइफ, मदर, फादर और बेटा। अरे अच्छा, सर हम आत्मा नहीं है क्या? हम लोग भी तो आत्मा ही है, हम जीव है भाई, हम आत्मा है। आत्मा कहते हैं तो भूत प्रेत दिखते हो, ऐसा नहीं है। हर जीव, चींटी, मक्खी, मच्छर सब आत्मा है। आत्मा और जीव पर्यायवाची शब्द है। तो प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है, प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए प्रयास भी करता है, और हम लोग भी करते हैं। लेकिन कितना सुखी हो पाते हैं ये तो हम सब महसूस कर रहे हैं। श्रीमद जी ने सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है, इतनी सुंदर लाइन लिखी है। ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा प्रयास सुख प्राप्ति के लिए चल रहा है और लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। आखिर सुख प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, सुख मिल क्यों नहीं रहा है? तो ये कह रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा एक बात और है कि प्रत्येक जीव सुख क्यों चाहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सुखी क्यों चाहता है? दौलत राम जी कह रहे हैं इसमें ही इसकी भलाई है। ये जो पहली लाइन पढ़ी ना अभी अपन ने, आत्म को हित है सुख, लेकिन वो सुख कैसे मिलेगा? सो सुख आकुलता बिन कहिए, वो सुख आकुलता के बिना वाला सुख है। ये तलाशना पड़ेगा आपको, सच्चा सुख कहाँ है, सुख कौन सी चीज में है। हम तो सुख के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हमारे वो कहाँ कहाँ सुख लगता है। हम कोशिश करें एक बार कि हम कहाँ कहाँ सुख महसूस करते हैं, देखें तलाश आपको कहाँ सुख लगता है, कहाँ मजा आता है। एक एक चीज से शुरू करें अपन, खाने पीने से शुरू करें, किस चीज में मजा आता है, कौन सी चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है हमारे को, कौन सी चीज बहुत पसंद है खाने में? क्या चीज? खाने पीने की भाई पूछ रहा हूँ मैं, खाने पीने में क्या चीज पसंद है? कोई स्वीट, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और क्या क्या बनता है, कचौरी, कचौरी पसंद है सच में? चलो कचौरी की बात करें अपन, तो कचौरी यदि हमारे को पसंद है तो कचौरी में से मजा आता है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, कचौरी की चर्चा करते ही हमारी बत्ती सी खिल गई। कभी कभी तो ऐसा भी होता है हमारे पसंद की यदि घर में कोई चीज बनने वाली हो और हमें पहले पता लग जाए तो हम ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी। तो हम कह रहे हैं यदि कचौरी में आनंद आता है तो कचौरी की चर्चा में आनंद आता है कि कचौरी सामने आएगी तो आनंद आएगा, किसमें सुख मिलेगा? तो चर्चा में तो नहीं आएगा, सामने तो आनी ही चाहिए। अच्छा सामने आने पे आनंद आता है या कचौरी को उठाने में आनंद आता है? हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन से स्टेप पर आनंद है, जहां सुख होगा हम वहां रुक जाएंगे क्यों? यदि कचौरी को देखने में आनंद आता हो तो देखते रहेंगे, सुख होता रहेगा। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं देखने में नहीं है तो उठाने में यदि सुख लगता हो तो हाथ में उठा लो उसको। और ऐसा भी नहीं है यदि आपको उसको मुख में रखने में, एक गास हमने मुंह में रखा और मजा आ गया तो फिर मुंह में रखे रखना चबाना नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि चबाने में आनंद आ रहा है तो चबाते रहना, निगलना नहीं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कौन सा स्टेप ऐसा होगा जिस स्टेप पर हमारे को सुख मिल रहा है। आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चबाने में नहीं है, निगलने में होगा, तो फिर नीचे निगल गए हम, और फिर एक कचौरी खाने के बाद, दो खाने के बाद, और कदाचित तीसरी और ले लेने के बाद, चौथी तो नहीं, तीन पर्याप्त है, फिर चौथी क्यों नहीं, फिर उसमें से आनंद कहां चला गया, फिर उसमें से सुख कहां चला गया। इसका मतलब यह कि उसमें पहले भी सुख नहीं था, हमारे को सुख लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें सुख मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में परिणाम बदल गए, अब सुख नहीं है इसमें। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, पहले ये नक्की करें, हम इस बात का निर्णय करें कि सुख आखिर है कहां, सुख किस बात में है। जब हमारे को इस बात का पक्का निर्णय हो जाए कि इस चीज में सुख है, वो काम करें और सुखी हो जाए। एक्चुअल में सुख प्राप्ति के लिए कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है सुख कहाँ है, तो सब गड़बड़ हो रही है। जाना है हमारे को किसी और दिशा में और दौड़ रहे हैं किसी और दिशा में। पूर्व दिशा में जाना था और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके दौड़ रहे थे, और हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि नहीं नहीं जल्दी हो रही, जाने दो मेरे को, बताओ तो सही जाना कहाँ है तुम्हारे को, नहीं नहीं जाने दो मेरे को, भैया तो तेरी दिशा ही गलत है, तो जितना तेज दौड़ेगा उतना मंजिल से दूर होता चला जाएगा। हमारी जितनी दौड़ है वो सब मंजिल से विपरीत दिशा में है। चलो कोई बात नहीं, कचौरी में आनंद तो नहीं मिला हमारे को, तो इसी तरह से सब खाने की चीजों में आनंद नहीं है, सब में एक ही बात लागू होगी, क्योंकि यदि उसमें आनंद है, मान लीजिए डोसे खाने में आनंद आ रहा है, तो एक दो तीन चार पांच के बाद में, मतलब धीरे धीरे जितना जिसकी लिमिट है, जितना जो खा सकता है, उसके बाद में ऐसा क्यों लगता है कि बस अब नहीं। यदि मन ऐसा होता है कि बस अब नहीं, ये समझ लीजिए अभी सुख की परिभाषा बतला रहा हूं मैं अपने शब्दों में, सुख क्या चीज है। अभी मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूं, रमेश भाई मतलब सुख किस चीज में है, आप अपने भाषा में बतलाइए, मुझे शास्त्रों की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि शास्त्रों की चर्चा थोड़ी सी ऐसे समझते हैं अपन, अरे यार ये तो शास्त्रों ने लिखी है, पता नहीं शास्त्रों की बातें हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बतलाइए आपको क्या लगता है, सुख किसे कहना चाहिए, सुख किसे मानना चाहिए, सुख की व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए, सुख को किस डेफिनेशन में हमारे को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या उसकी परिभाषा बनाए हम, क्या क्राइटेरिया बनाए हम सुख का, कि इसका नाम सुख है, फिर उस चीज को अपन अप्लाई करके देख लेंगे सब जगह। महेंद्र भाई ये बात कही आपने, और कुछ परमानेंट बहुत अच्छी चीज है, और मैं एक बात मेरी तरफ से कहता हूँ, ये बातें सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जहां से ये जीव हटना पसंद करे वहां सुख नहीं है, और जहां ये जीव लगे रहना चाहे, जिस चीज को बनाए रखना चाहे वहां सुख है। जिस चीज के बने रहने पर ये जीव वहां से हटना नहीं चाहे वहां सुख है। अप्लाई कीजिए, टीवी देखे अभी अपन ने बात की खाने पीने की, आप अप्लाई कीजिए, टीवी देखने में मजा आता है कि नहीं, क्या बात करते हो साहब, टीवी के बिना तो नींद ही नहीं आती, टीवी के बिना कहां नींद आती है, जब तक थक हार करके इस लेवल तक हम टीवी देखते हैं कि जब तक बहुत गहरी नींद न आने लग जाए तब तक चैनल बदलते ही रहते हैं, ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है, हो सकता है आप लोग नहीं करते हो, लेकिन यंग जनरेशन में तो ये हाल है, क्यों भैया सही कह रहा हूँ ना, ऐसा ही है क्या, पीछे टीवी नहीं है, दैट्स गुड। माने लेकिन बहुत हाल खराब है, तो मजा आता है कि नहीं उसमें, और यदि उसमें मजा आता है तो हम कह रहे कितनी देर मजा आता है, एक मूवी देखने के बाद में दूसरी, दूसरी देखने के बाद में तीसरी मूवी, फिर हम कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत थक गए, अब नहीं, अब नहीं, इसका मतलब उसमें सुख नहीं था। अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं अपन, तो कोई शास्त्रों की बात नहीं है कुछ भी, है ना, कोई अब ऐसा किसी सुख की बात करें अपन, उनका अभूतपूर्व होता होगा और नमालवास इंद्रिय होता होगा, और ऐसे ऐसे किसी उसकी बात नहीं कर रहे अपन, अपन सिर्फ ये बात कर रहे हैं कौन से सुख की बात कर रहे हैं अपन, वो सुख जहां से जीव हटना नहीं चाहे, और वो अवस्था जहां से हटना चाहता है, जहां से हटना चाहता है, इसका मतलब वहां सुख नहीं है, ठीक है। टीवी देखते देखते यदि मन भर जाता है, माने सुख नहीं है, खाते खाते भाई मीठा खाते खाते यदि परेशान हो जाता है तो नमकीन खाना शुरू कर देता है, और नमकीन खाते खाते परेशान हो जाता है तो खटाई खाना शुरू कर देता है, मीठा खाना शुरू कर देता है, खाते खाते परेशान हो जाता है तो खाना बंद कर देता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस जगह से ये जीव बदलना चाहे वहां सुख नहीं है। आप यदि अभी ऐसे बैठे हैं और ऐसे बैठे बैठे आप यदि ऐसे बैठते हैं, इसका मतलब पहले जिस अवस्था में बैठे थे वहां आपको नहीं जच रहा था, इसलिए आपने अपना आसन बदल लिया। माने आसन का बदलना, अवस्था का बदलना, क्षेत्र का बदलना, ये बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो खड़ा हो जाता है, और खड़े खड़े परेशान हो जाता है तो बैठ जाता है, जगता जगता परेशान हो जाता है तो सो जाता है, और सोते सोते परेशान होता है तो फिर जग जाता है। इसका मतलब चैन तो कहीं नहीं है, सुख तो कहीं नहीं मिल रहा है ना। फिर साहब ये तो सब लौकिक बातें हैं, पंचेंद्रिय किसी विषय के अंदर सुख नहीं है, क्योंकि सब जगह इस जीव को थकान महसूस होती है, उकताहट महसूस होती है, वहां से जीव रुकना चाहता है और उन सबको करते हुए भोगते हुए कहना चाहता है बस अब नहीं, अब बाद में, अब बहुत हो गया, इसका मतलब वहां सुख नहीं है। लेकिन पूजन में आनंद आता है बराबर से, उसका आनंद तो सच्चा आनंद है, भक्ति में आनंद आ रहा है, नाच रहे हैं हम, अच्छे म्यूजिक चल रहा है और बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, और लास्ट में अपन बोल देते हैं आज के आनंद की जय, बहुत आनंद आया हमारे को उसमें, कि क्यों ये जो आनंद आ रहा था आपको उसमें जो खुशी मिल रही थी वो अच्छा लग रहा था, वो कितनी देर अच्छा लगता है। पूजन यदि एक घंटे की जगह 1.5 घंटे चलने लगे तो, और 1.5 की जगह 2 घंटे चलने लगे तो क्या हो, 2 की जगह 2.5-3 घंटे बंदी ना हो तो आपको क्या लगता है उसका आनंद कहाँ चला जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस चीज में आपको ऐसा लगता है कि बस अब नहीं, इसका मतलब उसमें सच्चा सुख नहीं है, पूजन में भी सच्चा सुख नहीं है, भक्ति में भी सच्चा सुख नहीं है, भगवान के दर्शन करने में भी सच्चा सुख नहीं है, और तो और स्वाध्याय करने में भी सच्चा सुख नहीं है। कभी कभी यदि आपको ऐसा लगता हो अरे हाँ स्वाध्याय में तो बहुत मजा आता है, प्रवचन सुनने में तो बहुत मजा आता है, ऐसा मन करता है कि बस सुनते रहे हम, हमारे ऐसे ऐसे विद्वान आते हैं यहाँ, ऐसे ज्ञानी विद्वान, माने वो जब बोलते हैं, अभी मेरे से कह रहे थे बाबू जी कि वो धीरू भाई पंडित जी आते हैं क्या सरस बोलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है अपने को कि बोलते हैं इतना मीठा बोलते हैं, तो बोलते रहे अपन सुनते रहे मजा आता है। कहते तो हैं हम ऐसा, लेकिन यदि घंटे की जगह 2 घंटा चलने लगे, 3, 4, 5 और रुके ही नहीं, तो फिर हमें लगता है कि यार अब तो बस करो, अब तो बस करो, इट मीन्स अब उसमें से सुखाना बंद हो गया, मतलब उसमें सुख था ही नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं जिस स्थिति पर पहुंच करके आपने कह दिया कि बस करो, इसका मतलब उसमें पहले भी सुख नहीं था, उसमें भ्रम से सुख मान रहे थे, तो फिर कहां है सुख। तो ये कह रहे हैं सो सुख आकुलता बिन कहिए, ऐसा यहां लाइन दे दिए इन्होंने, जहां आकुलता नहीं होगी वहां सुख होगा, और आकुलता कहां नहीं है ये तो बता दो हमारे को, आकुलता कहां नहीं है, हिंदुस्तान में आकुलता नहीं है कि अमेरिका में आकुलता नहीं है कि कौन से देश में चले जाएं, कौन से शहर में चले जाएं, कौन सी जगह पर जाएं हम, शिखर ने गिरनार जी और न मालूम कौन कौन से क्षेत्रों की बात करें हम, वहां जाकर के आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। ये कितने सुंदर यहाँ लाइन लिखी है इन्होंने, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। हम कह रहा मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। हमने कुछ युवा साथी थे और उनसे कहा कि यार देखो ये जिंदगी बहुत कठिन है और एक काम करो मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। मोक्ष मोक्ष की चर्चा करने वाले, कौन सा मोक्ष, हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए हमारे को, बोलो ऐसा कहते हैं कि नहीं। आज अपने युवा बालकों से आप ये बात कह करके देखो मोक्ष चाहिएगा तुम्हारे को, तो कहे आप ही चले जाओ ठीक है, कौन सा मोक्ष, हमें मोक्ष मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि उनसे हम बात करें कि आपको सुख चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो एग्री होंगे इस बात के लिए, सुख तो चाहिए। बस हम ये कह रहे हैं कि मोक्ष चाहिए या सुख चाहिए, दोनों एक ही बात है, शब्द बदल गए। क्योंकि मोक्ष और सुख पर्यायवाची है, पूर्ण सुख मोक्ष अवस्था में ही है। सच्चे सुख, पूर्ण सुख, अभूतपूर्व सुख, सादी अनंत काल के लिए सुख, उस अवस्था का नाम ही तो मोक्ष है। और मोक्ष क्या चीज है? हम लोगों ने मोक्ष शब्द को नहीं समझा, इसलिए हमने कहा मोक्ष नहीं चाहिए लेकिन सुख चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आपको सुख चाहिए और मोक्ष नहीं चाहिए? क्योंकि सुख तो मोक्ष के अलावा और कहीं है नहीं। अब समझ चाहिए कि मोक्ष कहाँ है, कौन सी फ्लाइट जाती है। मोक्ष में सुख है तो समस्या तो कम नहीं है ना हमारे सामने। अब यदि मोक्ष में सुख है तो हमारे को मोक्ष का टिकट कटाना पड़ेगा, अब मोक्ष के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। कहां से रिजर्वेशन होता है, कहां टिकट मिलता है? और मोक्ष यदि हमारे को जाना है तो फिर वो मोक्ष है कहां, ये भी पता होना चाहिए। एक माइनस पॉइंट है लेकिन मोक्ष के साथ में, क्या माइनस पॉइंट है कि मोक्ष में सुख है भी या नहीं है, ये भी सब शास्त्रों से ही पता लगता है। क्योंकि जो लोग मोक्ष चले जाते हैं वो तो बताने आते नहीं है, और जो यहां रहते हैं वो मोक्ष में गए नहीं है। अब क्या करें, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। ये मोक्ष जाने के बाद तो लौट करके व्यक्ति आता नहीं है, और जो व्यक्ति मोक्ष की चर्चा करते हैं वो लोग मोक्ष गए नहीं है। अब क्या करें हम, ऐसी स्थिति में तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया हमारे सामने। क्योंकि हमारे को तो जहां भी हम जाते हैं उस जगह का पहले परिचय ले लेते हैं, पता कर लेते हैं। हम यहां आए तो हमें पहले वहां मालूम कर लिया कि मौसम कैसा रहता है, ज्यादा ठंड तो नहीं है, ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, किसके यहाँ रुकना है। तो मालूम चला महेंद्र भाई के यहाँ रुकना है आपको, कहा ओके। मतलब पहले कंफर्म हुआ ना कि कहाँ जाना है, कौन मिलेगा, वहाँ क्या व्यवस्था होगी। कहीं भी यहाँ से हमारे को समय शिखर जी जाना है तो पहले से नक्की करते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं वहाँ आवास की व्यवस्था है या नहीं है, ठहरने की व्यवस्था है या नहीं है, कपड़े बिस्तर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, खाने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। कितनी बातों के बारे में सोचते हैं, वहां के मौसम के बारे में सोचते हैं। और अभी आप लोग सब तैयार हो गए मोक्ष जाने के लिए बिना जानकारी लिए हुए, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं, पहले जानकारी लीजिए मोक्ष के बारे में। ऐसे ऐसे मोक्ष जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो सब क्या होगा। वहां जाने के बाद में जो जीव वहां चले गए हैं उन लोगों के साथ में आज क्या बीत रही है ये किसको पता। सिद्धों के साथ में एक ही जगह पर है। हमने एक पंडित जी का कुछ सुना था प्रवचन कि वो कहाँ है सिद्ध भगवान, तो मालूम चला कि सब ऐसे उल्टे टंगे हैं। तब लो ये और मुसीबत है, माने ऐसे जाकर के टंग जाते हैं बिल्कुल ऐसे ऊपर, सबके स्तर बराबर होते हैं। मोक्ष में पता है आपको, जितने जीव यहाँ से मोक्ष जाते हैं उन सबके ऊपर स्तर बराबर होते हैं और पैर ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे उल्टे होते हैं वहां सिद्धालय में। तो क्या करें, दो बातें हैं, या तो हमारे को कोई मोक्ष में गया हुआ व्यक्ति वापस आकर के बतलाए कि वहां ऐसा ऐसा था, बड़ा मजा आया, तो फिर हम सोचते हैं चलो हम भी प्लान करेंगे, होता है ना ऐसा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ वो है ना, कौन सा नॉर्थ में अलास्का, तो बिना कहे समझ में आती है। यदि हमने वहां जाने का मन बनाया, कभी गए नहीं है, तो आपने वहां जाने का मन क्यों बनाया, मैं आपसे पूछता हूं। कि जो लोग वहां गए हैं आपने उनसे सुना, तो हम आपसे पूछते हैं जो मोक्ष गए हैं आप या तो उनसे सुने मोक्ष के बारे में, और यदि कोई नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन एक होता है कि वहां जो लोग रहते हैं उनका किसी व्यक्ति के साथ में कनेक्शन हो, लिंक हो, कोई बातचीत चलती हो, कोई हमारा परिचित है और उसका जानकार वहां रहता है तो उससे जानकारी ले लेते हैं वहां के बारे में। गया हुआ तो नहीं है नहीं, उसका संपर्क वहां से है। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, और इसमें दो में से पहला वाला तो कट गया क्योंकि सिद्ध भगवान तो लौट के आते नहीं है। तो फिर अब दूसरा ऑप्शन बचा है, तो फिर सिद्धों से बातें करने वाले भी मिलते हैं कि हाँ मिलते हैं ना, हमारे जो मुनिराज हैं वे अंतरोन्मुख होकर अपने स्वभाव की साधना करते हुए क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। सुनिए आपने ऐसी भक्तियां, वे मुनिराज क्या करते हैं, मेरे अपने स्वभाव की साधना पूर्वक जिस आनंद का अनुभव सिद्ध करते हैं उसी आनंद का अनुभव वे मुनिराज करते हैं और अपने स्वभाव की साधना पूर्वक उस सिद्ध दशा का वर्णन करके बतलाते हैं जो कि पूर्णतः सत्य है। एकमात्र जगह है इस तीन लोक में जिस जगह पर सुख है, पूर्ण सुख है, और उस जगह का नाम है मोक्ष। इसलिए यदि आप पूर्ण सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मोक्ष के मार्ग में हमारे को लग जाना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि यदि मोक्ष के मार्ग में लगने की बात यहां कह रहे हैं, शिव मग लागियो चाहिए, शिव मग मोक्ष के मार्ग में लागियो चाहिए, हमारे को मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, तो मोक्ष की जगह बतलाओ पहले कहां है। बताया अभी तो वहां सिद्धालय में है कि नहीं नहीं वहां नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष कोई बाहर की चीज नहीं है। आप बाहर में यदि मोक्ष को तलाशते हो, आप यदि वहां सिद्धालय में मोक्ष की कल्पना करते हो, आप यदि लोक के शिखर पर तीन लोक के ऊपर तनुवास वलय में सिद्ध दशा और मोक्ष की कल्पना करते हैं तो आप भ्रम में हैं। मोक्ष वहां नहीं होता, मोक्ष यहां होता है, उसके बाद वे जीव वहां जाकर विराजमान होते हैं। ख्याल नहीं, बट वहां जाने के बाद मोक्ष नहीं होता। जिन जीवों का मोक्ष यहां मध्य लोक में अपने स्वभाव की साधना करते हुए हो जाता है, वे ही जीव अल्प काल में वहां जाकर विराजमान होते हैं। एक दो तीन समय में, एक समय में अविग्रह जीवस्य, ऐसा तत्वार सूत्र में सूत्र दिया, एक एक समय में वहां जाकर के विराजमान हो जाते हैं। वो बात की बात है। तो क्या कहा, मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए क्या करना चाहिए कि बाहरी घुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो फिर करें क्या कि डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। निज घर में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ, अपने में समा जाओ, अपने में लीन हो जाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, ये उपाय कह रहे हैं यहाँ। तो कितना सरल कर दिया है ये काम। अरे घर से यदि यहाँ जैन सेंटर में आने की बात कहें तो पसीना आता है, तो इतना दूर है ऐसा लगता है ना हमारे को, कितनी दूरियां हैं यहाँ पर, कहीं किसी दूसरी सिटी में, कहीं किसी दूसरे सबब में, कहीं दूर दूसरे स्टेट में यदि कहीं शिविर रखा हो और वहां जाने की बात करें तो हमारे को बहुत कंटाला आता है, बहुत परेशानी लगती है हमारे को। अब यदि मोक्ष को यहाँ से 7 राज्यों ऊपर बता दो तो ये पहले सर पकड़ लेगा, अरे भैया अपन तो नहीं जा सकते इतना ऊपर, मोक्ष कौन जाएगा। हम तो समय शिखर जी गिरनार जी की चढ़ाई देख करके ऐसा लगता है कि भैया हम तो नीचे से हाथ जोड़ते हैं, और चढ़े तो चढ़ते चढ़ते उतरने के बाद तो सोचते हैं भैया, या चढ़ते चढ़ते ही सोचते हैं प्रभु इस बार तो आ गया हूँ, आगे के आगे देखते हैं क्या होगा, इस बार तो पार हो जाए। कैसा लगता है अपने को? तो मोक्ष उससे नीचे है कि ऊपर है? नीचे। अंदर है मोक्ष। माने कितना आसान कर दिया है, कितना सरल कर दिया है आचार्यों ने ये काम, मुनिराजों ने, साधु संतों ने ये काम इतना आसान कर दिया है कि आपको मोक्ष में जाने के लिए बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पर्वत के शिखर पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मठ में जाने की जरूरत नहीं है, किसी उपाश्रय में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है। तो फिर आप क्या करें ये बताओ, आप तो जाना है कि नहीं? कहें कि जाना तो है लेकिन अपने में जाना है। जो अपने में आ जाते हैं वे सुखी हो जाते हैं, और जिन्हें अपनी खबर नहीं होती है वे दुखी बने रहते हैं। तो मोक्ष के मार्ग में लगने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, इस प्रेरणा के पीछे सबसे प्रबल हेतु क्या है कि मोक्ष में आकुलता नहीं। ऐसा कोई काम बतलाइए जिस काम में आकुलता ना हो। सब में आकुलता होने लग जाती है हमारे को, तो हर काम में आकुलता है, तो कहीं चैन नहीं है। महेंद्र भाई, हम एयरपोर्ट पहुंचे और मालूम चला कि फ्लाइट 3 घंटे लेट है, आकुलता शुरू हो जाती है हमारे को। और हम घर से निकल रहे हैं और मान लीजिए हमारे को ऐसे लग रहा है कि लेट हो गए हम, और रास्ते में सिग्नल मिल रहे हैं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हमारे को आकुलता होने लग जाती है। माने टाइम पर हो तो आकुलता, और टाइम पर नहीं हो, लेट हो तो आकुलता। कभी ऐसा होता है? कभी आपने प्रैक्टिकल महसूस किया ऐसा? घर से हम निकले, टाइम था फ्लाइट का 3 बजे का, हमारे को निकलना चाहिए था 2 बजे घर से, और निकलते निकलते 2:10 हो गए। कोई बात नहीं, गाड़ी तेज चला लेंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत है और रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। अब तो इतनी भारी टेंशन हो गई, पूरे रास्ते जाप करने लगे, हे भगवान गाड़ी लेट हो जाए, हे भगवान ट्रेन लेट हो जाए, हे भगवान फ्लाइट लेट हो जाए, हे प्रभु आज तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ये जाप करते हुए हम जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं पूरे रास्ते। और कदाचित हम वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद में अब फ्लाइट नहीं आई, अब तो खुश हो गए ना कि हाँ अब तो खुश हो गए, लेकिन अब फ्लाइट आ ही नहीं रही, और लेट होगी। पहले 15 मिनट लेट बोलता था, अब 1.25 घंटा लेट बोलता है, अब 1.5 घंटा लेट बोलता। अब कहते हैं हे भगवान आती क्यों नहीं है, हे भगवान चल क्यों नहीं रही है, फिर दूसरा जाप चालू कर देता है। इसको कहीं संतुष्टि नहीं है, इसको कहीं चेंज नहीं है, हर जगह पर आकुलता है। यह आकुलता दुख का कारण है या नहीं है? टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि तू अनुभव करने का प्रयास कर, प्रैक्टिकल अनुभव कर, स्वयं इस बात का अनुभव कर कि ये आकुलता मेरे दुख का कारण है या नहीं है। हमारे कहने से मत मानना, मैं भी यहाँ यही कहना चाहता हूँ, मैं सब जगह यही कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप उस बात को मत मानना, आपको ये बात जचती है या नहीं तो मानना, आपको ये बात पसंद आती है या नहीं। यदि आपको ये बात पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस बात को स्वीकार करो, और पसंद नहीं आती है तो तर्क करो, प्रश्न करो, शंका रखो सामने, आर्ग्यूमेंट करो, हो सकता है कि नहीं ऐसा, निर्णय करना तो आपके हाथ में है ना। एक छोटा सा प्रश्न, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मेरे को ऊपर टेबल माइक लगा करके बैठा रखा है, मेरा पद बड़ा है कि आपका पद बड़ा है? ऐसा नहीं है, पद आप लोगों का बड़ा है। त्रिपंड जी ऐसा कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, आप इसको सिद्ध करो तो समझ में आए बात। नहीं, बिल्कुल सिद्धि है, इसमें क्या है? देखिए हमारा जो काम है वो काम है वकीलों जैसा, हम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये जो जिनवाणी है ये सब जिनवाणी है हमारी लॉ की बुक्स, हम इनको पढ़ते हैं, इसके आधार पर चिंतन करते हैं, इसके आधार पर तर्क आपके सामने देते हैं। आपको किसी चीज का फैसला लेने के लिए तर्क सामने रखते हैं। फैसला किसको सुनाना है, फैसला किसको करना है, फैसला करने वाला कौन होता है? फैसला करने वाला मजिस्ट्रेट होता है, जो फैसला सुनाता है वो मजिस्ट्रेट है। तो हमारा काम तो वकीलों जैसा है, तो आपका काम मजिस्ट्रेट जैसा है। किसका पद बड़ा है आपके यहाँ अमेरिका में, मुझे नहीं मालूम। वकील का पद बड़ा होता है कि मजिस्ट्रेट का? निश्चित का पद बड़ा है, आपका पद बड़ा है भाई साहब, लेकिन आपको ये निर्णय खुद करना पड़ेगा, आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो सामने बैठ करके बोलता है ये बात बराबर बोलता है कि नहीं बोलता है, ये जो बात बोल रहा है ये बात इस लॉ से मेल खाती है या नहीं खाती है, जिनवाणी से मेल खाती है या नहीं खाती है, ये व्यक्ति जो बात कह रहा है ये बात शास्त्र के अनुसार है या नहीं है, ये अपनी मनगढ़ंत बातें तो नहीं कह रहा है, इसके द्वारा जो दलील पेश की गई, इसके द्वारा जो तर्क दिए गए वे सब सच्चे हैं कि नहीं, वे कसौटी पर कसे हैं कि नहीं, और यदि वे सारी बातें सही हो तो फिर फैसला लेने में देर क्यों लगाते हो, आगे की तारीख क्यों देते हो, करेंगे सम्यक दर्शन तो करेंगे, डेट पे डेट आगे नेक्स्ट डेट, यहां भी होता है क्या ऐसा, या फैसले जल्दी होते हैं, हिंदुस्तान का तो हाल खराब है, वहां तो तारीख पे तारीख चलती रहती है, फैसले नहीं होते हैं, यहां कैसा होता है, हो जाते हैं जल्दी, टाइम लगता है, इंडिया जैसा नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को जल्दी निर्णय होना चाहिए, मैं कहता हूं सच में बात, मेरे बहुत लोग कहते हैं साहब अमेरिका में तो धर्म बहुत मुश्किल है, लोग ऐसा कहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी बातें करते हैं लोग, धर्म यहां अच्छा है, राइट, बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात कहता हूं, मेरे को यहां अभी कई सेंटर्स में अभी भी पिछले साल भी और भी बहुत लोग कहते हैं जो यहां रहते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमारे को बहुत और धर्म करना है और सीखना है तो हम इंडिया आना चाहते हैं, कहा भूल गए मत आना कि क्यों, मैं ये कहता हूं आप यदि वहां चले जाएंगे आप फंस जाएंगे, आप उलझ जाएंगे, दुनियादारी में उलझ जाएंगे, वहां के रिश्तेदार जानने वाले मिलने वाले, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, कभी किसी के क्या हो गया कभी किसी का क्या, इतने झमेले हैं वहां पर जिसकी हद नहीं है, यहाँ कम से कम आप अपने टाइम को अपने हिसाब से तो जीते हैं, आपके पास में पर्याप्त समय है अपने आप के लिए, कोई झमेला नहीं है किसी तरह का, अपना काम किया और अपन फ्री है, स्वाध्याय के लिए भी फ्री है, वहां जाके क्या कर लेंगे आप, देखो ये वैसी मान्यता है, एक क्षेत्र में सुख नहीं और दूसरे क्षेत्र में सुख है, हम कह रहे हैं किसी क्षेत्र में सुख होता ही नहीं है, कितनी बड़ी विपरीत मान्यता लेकर के बैठे हम, सुख दुख किसी जगह पर होता है, धर्म किसी क्षेत्र से बंधा हुआ है किसी जगह से बंधा हुआ है, जब हमने ये बात कह दी कि मोक्ष अंदर से होता है तो वो अंदर जाने का काम यहां भी हो सकता है और वहां भी हो सकता है, अंदर जाना है ना, हमने अंदर जाने की बात कही पर आप इंडिया जाने की बात समझने लगे, तो हम तो बात अंदर की कर रहे हैं भाई, आपने कहीं ऐसा समझ लिया होगा पंडित जी को इंग्लिश तो आती नहीं है, थोड़ा सा पता नहीं इंडिया बोलना चाहते होंगे, अरे भाई इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, तो भीतर जाने की बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, वहां मिलेगा सच्चा सुख, बिल्कुल नहीं, आप समय निकालिए आत्मकल्याण के लिए, समय निकालिए निर्णय करने का प्रयास कीजिए, जो बात आप कम पढ़े, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पढ़ना कोई कोई महत्व नहीं रखता है, पोथी पढ़ पढ़वा पंडित भया न कोई, कबीर दास जी की पंक्ति है सुनी आपने, अरे नहीं नहीं क्या पोथी पढ़ पढ़वा पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर आत्म के पढ़े सो पंडित हुए, आपकी पंक्तियां बिल्कुल सही है, ढाई अक्षर प्रेम के और प्रेम में भी ढाई अक्षर है, आत्मा में भी ढाई अक्षर है, तो हम क्यों प्रेम के अक्षर की बात करें, हम तो कह रहे हैं आत्मा को जिसने पढ़ लिया हो वो पंडित है, वास्तव में शास्त्रों के पढ़ने से क्या होता है, कितने शास्त्र पढ़े, अरे पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े और तोड़ी कई मालाएं और मान कषाय घिसी नहीं मन की घिसजाली प्रतिमाएं, क्या क्या नहीं किया हमने, यही तो हो रहा है, अरे खूब शास्त्र पढ़ लिए हमने, पढ़ क्या लिए, खूब पढ़ लिए पढ़ पढ़ करके, और इतने माला के जाप किए कि खूब टूट गई मालाएं भी, और इतने भगवान की आकर के पूजन की आरती की और उनको घिसा उनको उनका अभिषेक किया जलाभिषेक किया प्रक्षालन किया खूब प्रतिमाएं भी घिस गई, लेकिन अंदर की मान कषाय घिसी है नहीं बोलेंगे, अंदर से हमने अपने आप को नहीं बदला, ये जैन दर्शन अंदर से बदलने की बात करता है बाहर से नहीं, हम सब बाहर से बदलना चाहते हैं अंदर से कोई नहीं बदलना चाहता, वही बात सामने आती है। हम सब दिखाना चाहते हैं, हम सब प्रदर्शन करना चाहते हैं। सच में हमसे बात करेंगे तो अलग प्रकार से करेंगे, और कोई दूसरा घर में आएगा तो उससे अलग प्रकार से बात करेंगे। कोई धार्मिक व्यक्ति होगा तो उससे अलग प्रकार से बात की जाती है। कोई विद्वान घर में आएंगे तो छोटे छोटे 2 साल के बच्चे से कहेंगे बेटा नमोकार मंत्र सुनाना। कोई दूसरा मेहमान घर में आएगा तो उसको कहेंगे बेटा वो गाना गा के सुनाना। देखो मतलब क्या होता है, हम कैसा दिखना चाहते हैं, हम कैसा दिखाना चाहते हैं, हम दूसरे के हिसाब से बन करके दिखाना चाहते हैं। हम अच्छे बनना नहीं चाहते, हम अच्छे होना नहीं चाहते, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, लोगों को अच्छा दिखे। बहुत सुंदर वाक्य लिखा किसी ने, अभी हम बात कर रहे थे इस तरह की, ऐसा लिखा उसने, बहुत अच्छे कोई विद्वान हुए, मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा हम जैसा दिखना चाहते हैं या व्यक्ति जैसा दिखना चाहता है यदि वैसा बन जाए तो उसका उद्धार हो जाए। कैसा बनना है बताओ, कि जैसा दिखना चाहते हो वैसा बन जाओ। आप कैसा दिखना चाहते हो? हम सरल दिखना चाहते हैं, हम महान दिखना चाहते हैं, है ना? हम हमारी कोई हमें ऐसा दिखाना चाहते हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत सरल हैं, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं हमारे को गुस्सा आता ही नहीं है, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत आत्मार्थी हैं। हम कैसा दिखाना चाहते हैं, कैसा शो करना चाहते हैं बताइए। लेकिन है क्या वास्तव में ऐसे? हम ये कह रहे हैं कि जैसा आप दिखना चाहते हो, जैसा दिखाना चाहते हो, जैसा प्रदर्शन करना चाहते हो, जैसा दूसरे लोगों को बतलाना चाहते हो, वैसे बन जाओ, हो गया उद्धार। कितना सा काम है, कितनी सिंपल सी बात है। आखिर आप जैसा दिखना चाहते थे उस चीज को चाहते तो हुई ना, बस वैसा बनना ही है। हम यदि कुछ दिखाना चाहते थे दूसरे व्यक्ति को, इसका मतलब उस चीज को अच्छा मान रहे थे हम, उतना ही परिणमन करना है। युगल जी साहब ने पूजन में, देवशास गुरु पूजन में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है इस संदर्भ में। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन भी माया कुछ शेष नहीं। पुष्प फूल, फ्लावर की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं। क्या बात कह दी उन्होंने, हे भगवान, पुष्प समर्पित करते हुए भगवान को क्या कह रहे हैं, हे प्रभु ये पुष्प अंदर से भी कोमल है और बाहर से भी कोमल है, लेकिन हे भगवान, हे देव, हे सच्चे देव, हे परमात्मा, आपके सामने पुष्प समर्पित करता हुआ इस पुष्प को देख करके कि अंदर और बाहर में कितना कोमल है, मैं आज अपने अंतर का भेद, अंतर का रहस्य, मेरे अंदर की सीक्रेट बात, ये भगवान मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये क्या सीक्रेट बात बतलाना चाह रहे हो? कि ये सीक्रेट बात बतला रहा हूं प्रभु कि अंदर में तो सरलता बिल्कुल नहीं है। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं, उसमें सरलता बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे कह दिया, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। मन में कुछ चलता है, कहता कुछ और हूं और दिखाता कुछ और हूं। जैसा दिखता है उसके विपरीत अंदर मन में चलता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अंदर में जो चल रहा है या तो वो बाहर दिखाओ तो पता लगे लोगों को, या फिर बाहर में जैसा दिखाते हो वैसा अंदर में अपनाओ। दोनों में से एक काम कर लो। ये कितना सरल उपाय है, ये व्यक्तित्व विकास की बात है। हम अपने आपके व्यक्तित्व को यदि बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो जीवन किस तरह से सुधर सकता है, हमारा जीवन का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। हर व्यक्ति के साथ में ये प्रॉब्लम है, नीचे से ऊपर तक। मैं यदि इस चीज को अधिक विस्तार करके बतलाऊं, मैं तो बहुत विस्तार कर सकता हूं मैं, लेकिन एक आध वाक्य में आपको कहता हूं, आप अपने अपने लाइफ को टटोलने का प्रयास करना, हम कैसे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। आप प्रैक्टिकल सोचिए जरा अपने आप के बारे में और महसूस कीजिए। और आपको यदि अपने आप के बारे में नहीं दिखता हो तो मैं थोड़ा बहुत चित्र खींच के बताऊं। आप देखिए जरा, जिस समय मंदिर में 50 लोग बैठे हों उस समय हम भगवान के दर्शन किस तरह से करते हैं, और जब मंदिर में कोई नहीं हुआ अकेले हों तो भगवान के दर्शन कैसे करते हैं। आप अपने अंदर में झांकने की कोशिश कीजिए जरा। मतलब जिस समय मंदिर भरा हुआ है वो कितने भक्ति भाव से भगवान आहा, और जिस समय कोई नहीं है उस समय हे प्रभु। आप जरा सोचिए, हो सकता है आप अच्छे से दर्शन करते होंगे लेकिन यदि उसमें किंचित भी फर्क दिखाई देता है, इट मीन्स हम दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं दर्शन करते समय, हमारे को दर्शन करते समय लोग दिख रहे हैं। हमारे को दर्शन करते समय ये दिख रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं। हो गया यार, क्या चल रहा है बतलाओ हमारे मन में। तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, आप लगा करके देखना, अपने चिंतन को और अपनी प्रवृत्ति को दोनों को आपस में मिलान करके देखना, और यदि ऐसा महसूस होता हो कि इन दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है तो दोनों को एक समान करने का प्रयास करना। क्योंकि ये जो भेद दिखाई दे रहा है ना, ये भेद आपके आकुलता को उत्पन्न करेगा और वो दुख का कारण बनेगा। और जहां भेद नहीं है तो कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो मंदिर में, हम जैसे हैं वैसे हैं, अंदर में जैसे हैं बाहर में वैसे हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, कितनी सिंपल सी बात है। यही धर्म है, इस एक रूपता का नाम ही धर्म है, इसे ही सरलता कहते हैं। इन मन वचन का एक रूपता को अर्जव धर्म कहते हैं, इसे मायाचार का अभाव कहते हैं। ये मायाचार का अभाव अकेला माया का अभाव नहीं है, ये कषायों का अभाव है, ये सबका अभाव है। और जहां कषायों का अभाव है वहां मुक्ति है, वहां आकुलता का अभाव है। मतलब किस किस चीज का नाम मुक्ति है, हेमचंद्र के हरिभद्राचार्य उनका बहुत प्रसिद्ध श्लोक है एक, क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, हेमचंद्र हरिभद्र दोनों आचार्यों का नाम सुना है आपने, बहुत प्रसिद्ध न्याय के विद्वान हुए, बहुत गजब बातें लिखी है उन्होंने। वे कहते हैं भगवान की चर्चा करते हुए, भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हो कि नहीं, आप महादेव जी को नमस्कार करते हो कि नहीं, या महावीर को नमस्कार करते हो, एक ही देवता को मानते हो कि सबको मानते हो। पता है क्या जवाब दिया उन्होंने, बहुत न्याय के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा, भाव के का जो बीज है, संसार का जो बीज है, मूल कारण है, ऐसे राग द्वेष आदि का जिसने अभाव कर दिया हो, भव बीजांकुर जनना राग आदि क्षयम उपागता यस्य, फिर चाहे आप उसको ब्रह्मा कहो, फिर चाहे विष्णु कहो, चाहे महेश कहो, चाहे वीर कहो, चाहे महावीर कहो, चाहे आदिनाथ कहो, हम उसे नमस्कार करते हैं। किसे नमस्कार करते हैं, जिसने राग द्वेष का अभाव कर दिया। तो वीतरागता वो पूज्य है हमारे यहाँ, कहते राग द्वेष का अभाव जहाँ हो गया, कषाय का अभाव हो गया, और जहाँ कषाय का अभाव हो गया वहां आकुलता का अभाव हो गया, मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सच्चा सुख प्रकट हो गया। एक बार गहराई से इस चीज के बारे में आप विचार चिंतन करके देखना कि मोक्ष किस चीज का नाम है। और यदि आज तक आप ऐसा सोचते थे कि हाँ पंडित जी आते हैं कहते हैं मोक्ष के बारे में, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए, अपने आप से प्रश्न करो कि मैं मोक्ष के मार्ग में क्यों लगना चाहता हूं। क्योंकि जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा अपने को, अपने अंदर से इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट नहीं होगा। अपने आप से प्रश्न करना, मोक्ष के मार्ग में क्यों लगना है, मोक्ष की प्राप्ति क्यों चाहते हो, आखिर ऐसा क्या है मोक्ष में, आखिर ऐसा क्या है मोक्ष में जो हमारे घर में नहीं है, तो मोक्ष में है। हाँ
That's right.
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का है और उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए तो हमने कहा कि मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं। ये जो डिवीजन हो रहे हैं ये सब डिवीजन हमारे बनाए हुए हैं, आत्माओं में कोई डिवीजन नहीं है। वी कांट स्टॉप एनी वन, हम रोक नहीं सकते किसी को। हाँ, हेमचंद्र का है, बराबर। मैं कंफ्यूज अभी माइंड, सर्वज्ञ कहते हैं बराबर। ऐसा ही है, ये सब चीजें समझने के लिए है। और वास्तव में एक बार समझ में आ जाए तो सब कल्याण हो जाता है। ना समझी में झगड़े हैं, समझ में कोई झगड़ा नहीं है। तो नहीं समझते हैं तभी झगड़ा खड़ा होता है, और जहां हमने एक बार स्वरूप समझ लिया फिर कोई झगड़ा नहीं है। ये स्वरूप समझा बिना पामे दुख का अनंत, ये दुख पा रहा है, ये अनंत दुख इसको जो प्राप्त हो रहे हैं नहीं समझने की वजह से हो रहे हैं। समझ ले एक बार तो ये सारी चर्चा सब समझने के लिए है। हमने थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ की है और कुछ पॉइंट आपको दिए हैं, आप उनके बारे में विचार करना। और यदि किसी निर्णय पर पहुंचे तो फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और अभी यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई शंका हो किसी तरह की, अभी जो अपन ने 1 घंटे में चर्चा की, 1.25 घंटे में, उसमें कोई बात हो तो हम उसके बारे में।
Yeah.